नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु,
भविष्य के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को निरंतर सुनते हैं और उन मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परिवार के भविष्य के निमित्त युवक के पवित्र जीवन की आवश्यकता प्रकट करने के बाद अब परमेश्वर पति और पत्नी के संबंधों के विषय में निर्देश देते हैं। यहाँ हम विवाह को एक ऊंचे स्तर पर देखते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए और विशेष करके उन जवान भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज जो कुछ भी हम सीखते हैं निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारे जितने भी नव दंपति हैं उनके जीवन में भी आप कार्य कीजिए। हाँ प्रभु, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के पाप में डूबे हुए हैं या पारिवारिक परिस्थिति में उलझे हुए हैं, आप उनकी सहायता करें। हम सबसे बोले और बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आइए आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक निकाल लीजिए, 5 अध्याय उसके 15 से 17 पद को हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इसका शीर्षक है विवाह की पवित्रता। लिखा है 5 उसके 15 से 17 पद में, तू अपने को कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। दूसरे शब्दों में, अपनी संतान आपकी पत्नी से हो, न कि पराई स्त्री से। कहने का तात्पर्य है कि आपका जीवन पवित्रता का जीवन हो, पारिवारिक रीति से। नीति वचन 5 उसके 18 और 19 पद में लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। यह पद विवाह में प्रेम का वर्णन करती है। परमेश्वर का वचन अति स्पष्ट करता है कि विवाह में शारीरिक प्रेम और यौनाकर्षण को पवित्र होना चाहिए और बहुत ऊंचे स्तर का होना है। एक समय था कि इन बातों की चर्चा करना मना था। उन्हें अनैतिक और अपवित्रता में व्यक्त नहीं किया जाता था, विवाहितों में भी नहीं। क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर विवाह में शारीरिक प्रेम का वर्णन कैसे करता है? परमेश्वर इसे सर्वोच्च स्तर पर रखता है। स्मरण रखें कि विवाह की स्थापना परमेश्वर ने ही की थी और उसने मनुष्य जाति की भलाई और कल्याण के मनुष्य को प्रदान किया है। आज हमारे युग में अनैतिकता का एक काम यह भी है कि मनुष्य विवाह से मुक्ति पाना चाहता है। आज हम देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि विवाह के 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जबकि यह परमेश्वर की योजना में नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान के लिए मसीही परिवार प्रभु यीशु और कलीसिया के संबंध का चित्रण है। इससे बढ़कर ऊंचा और पवित्र संबंध अन्य कोई नहीं हो सकता। यही कारण है कि कलीसिया में मसीही विवाहों का टूटना एक संकट सूचक बात है। यह यदा कदा की घटना नहीं, लगभग आम अभ्यास हो गया है। इस संबंध में आवश्यक है कि कलीसिया अपने घुटने टेक कर पता लगाए कि समस्या क्या है, कहां से आरंभ हो रही है। यह संकेत है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों में नहीं पहुंच रहा है और कलीसिया के सदस्यों पर न तो प्रभाव डाल रहा है और न ही उन्हें हिला रहा है। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर विवाह को एक अद्भुत संबंध कहता है। विवाह एक सम्मानित और पवित्र बंधन है और इसे अशुद्ध नहीं करना है। इसका दूसरा पक्ष भी देखिए, परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरे सेवा काल के समय एक व्यक्ति ने, जो कलीसिया का सदस्य था, आकर मुझसे कहा कि वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर किसी और स्त्री को लेकर भागने जा रहा है। वह कलीसिया का सदस्य है और विश्वासी है या नहीं केवल परमेश्वर ही जानता है। उस समय मैं एक युवा सेवक के रूप में था और मैंने उसे अच्छी तरह झिड़का। वह क्रोधित होकर कहने लगा, क्या आप मुझसे मेरा उधार छीन लेना चाहते हैं? मैंने कहा, मेरे भाई, यदि आपको उधार प्राप्त है तो मैं आपसे आपका उधार नहीं छीन रहा हूं, परंतु यह अवश्य कहना चाहता हूं, और यह भी चाहता हूँ कि आप सदा स्मरण रखें, यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, तो आप निश्चय ही शैतान की संतान के समान काम कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो एक दिन परमेश्वर आपकी ताड़ना अवश्य करेगा और शायद आपकी जान भी ले ले। उसने मेरा ठट्ठा किया और अंत में उस अन्य स्त्री से विवाह कर लिया। आज वर्षों बाद वे दोनों अकेले हैं, अत्यधिक दुखी हैं, हताश हैं और निराशाओं से घिरे हुए हैं और प्रेम से पूर्ण रूपेण वंचित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ही सोचते होंगे, काश हम लौट पाते और नया जीवन आरंभ करने पाते। पहला पत्रस की पत्री 3:7 में पत्रस पतिगण को आदेश देता है कि वे बुद्धि से पूर्ण अपनी अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करें। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जी हाँ, यह एक अग्नि परीक्षा है। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसा जीवन निर्वाह करते हैं कि उनमें आनंद विश्वास व्याप्त है और एक साथ घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, तो वह परिवार मसीह यीशु और कलीसिया के संबंधों का प्रतीक बन जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे मित्रों कि परमेश्वर ऐसे परिवार को निश्चय ही आशीष देगा। ओह, यह कैसी महत्वपूर्ण बात है आज प्रत्येक परिवार के लिए। नीति वचन 5:20-21 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों का ध्यान करता है। आप कुछ भी क्यों ना करें, परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है और ध्यान करता है। हमें समझ लेना है कि परमेश्वर हमें देखता रहता है। हमारे साथ एक व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा था और उसने गाली बक दी। जब उसे पता चला कि हम लोग प्रभु के दास हैं, तो वह क्षमा याचना करने लगा। मैंने उससे कहा, भाई हमारी चिंता मत करो, हम तो आप ही के समान मनुष्य हैं, परंतु यह नहीं भूलना कि आप परमेश्वर के सामने तो सदा ही गाली देते रहते हैं। आप चाहे मैदान में हो, चाहे आप मधुशाला में हो, या कहीं भी क्यों ना हो, या बाजार में क्यों ना हो, आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, वह सब परमेश्वर के सामने होता है। परमेश्वर हमें सदा देखता रहता है और सोचता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं या क्यों कहते हैं। वह उलझन में पड़ जाता होगा, ऐसा मेरा सोच है। आगे हम देखते हैं नीति वचन 5:22-23 पद में, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। परमेश्वर कहता है कि लेखा देने का दिन आ रहा है, दंड देने का दिन, प्रतिफल पाने का दिन आ रहा है। मनुष्य सोचता है कि वह पाप करके बच जाएगा, परमेश्वर कहता है कि बचेगा कोई भी नहीं। मनुष्य के अपराध उसे आद घेरेंगे, आद धमकेंगे और उसके पाप उसे जकड़ लेंगे। आज बहुत से लोग अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर और किसी न किसी रूप में ऐसा काम करते हैं जो उचित नहीं है। वे सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, उन्हें उनका अधिकारी नहीं देख रहा है, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा अधिकारी जो स्वर्ग में है, उन्हें हमेशा देखता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में इस बात का निर्णय लें और प्रभु से सहायता मांगे ताकि हम इन सारी बुराइयों से बच सकें। मित्रों, यहाँ पर 5 अब समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे 6 में, और इस अध्याय में अलग अलग विषयों पर प्रबोधन है। इसके आरंभ में व्यापार जगत के लिए परामर्श है, विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए भी है। ये व्यापारियों के लिए अच्छे सिद्धांत हैं। परमेश्वर ने सबके लिए अच्छी बातें कही हैं, विश्वासियों और अविश्वासी दोनों के लिए। तो आइए हम देखेंगे व्यापार के उत्तम सिद्धांत। नीति वचन 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। यहां वह दो बातों की चर्चा करता है जो कैसे भी समय के लिए अच्छा परामर्श है। किसी मित्र के साथ समझौता करने में सावधान रहें, किसी अनजान मनुष्य के साथ साझेदारी नहीं करना। एक अविश्वासी भी यदि इस सुझाव को माने तो लाभ में ही अवश्य रहेगा। दूसरा पद कहता है कि वह घमंड करता है। यदि कोई किसी के साथ समझौता करता है तो वह यह दिखाना चाहता है कि वह बड़ा आदमी है और वह पैसों के विषय बड़प्पन दिखाना चाहता है। हमें इससे सावधान रहना है। तब हम पढ़ते हैं नीति वचन 6 उसके 3 पद में, इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा, उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। उसके पास जाकर अपना हिसाब किताब साफ करने से मत डर। अपने मित्र को थामने में और बैरी से संभलने में सावधानी रख। वह ठीक यही कह रहा है। जी हाँ, आगे आने वाले नीति वचन में भी वह यही कहेगा। तो आइए हम पढ़ें नीति वचन 6 उसके 4 और 5 पद को, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। लेखा जोखा स्पष्ट करने में देरी न कर, सोना भी नहीं है। किसी की गारंटी लेकर आप चिड़िया के समान जाल में फंस गए हैं, यह एक चेतावनी है। अब वह इसका विपरीत पक्ष प्रस्तुत करता है। व्यापार में कहने और करने में सावधान तो रहना ही है, परंतु चींटियों से भी कुछ सीखना अवश्य है। तो आइए हम पढ़ें नीति वचन 6 अध्याय 6 से 8 पद, लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेरे मित्रों, चींटी छोटी तो है परंतु बड़ी अच्छी शिक्षक है। वह हमें महान सत्यों का प्रकाशन प्रदान करती है। एक सत्य तो यह है कि वह किसी भी काम में अत्यधिक परिश्रमी है। परमेश्वर की संतान को चींटी से सीख लेना है। चींटी अपने जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त रहती है। वह भविष्य के लिए भोजन एकत्र करती है। वह लगातार परिश्रम करती रहती है। मेरे विचार में विश्वासियों का एक पाप आलस्य भी है। मसीह की सेवा में अनेक आलसी पाए जाते हैं। हमें स्वयं से पूछना है कि हम अपने बचे हुए समय में क्या करते हैं। क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या हम वचन का अध्ययन करते हैं? मेरे विचार में आज सेवा का श्राप आलस्य है। एक प्रभु के दास ने मेरे पास आकर कहा, मुझे लगता है कि मेरी सेवा का समय पूरा हो गया है। मैं इस कलीसिया में 3 वर्ष से सेवा कर रहा हूं और मेरे पास अब प्रचार के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूखा कुआं हूं। और वह अपनी धार्मिकता प्रकट करने लगा। मैंने प्रार्थना और मनन में बहुत अधिक समय लगाया है। मैंने पूछा, आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं? आप उसके अध्ययन में कितना समय देते हैं? मुझे उससे संतोषदायक उत्तर नहीं मिला। उसके अनुसार वह सप्ताह में 1 घंटा भी बाइबल अध्ययन नहीं करता था। वह कर्मठ था, सदा ही काम में लगा रहता था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण काम पर वह ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने उससे कहा, यदि आप अपनी दिनचर्या न बदलें तो आपको सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। रविवार की आराधना में तैयारी के बिना जाना लज्जा की बात है। आपके पास परमेश्वर का वचन संदेश होना आवश्यक है। उस जवान के लिए चींटी के पास शिक्षा है। जी हाँ, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। आज हम में से कई लोगों को उन चींटियों से सीखने की आवश्यकता है। आज बहुत से परिवार, बहुत से कलीसिया के सेवक परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, एक मशीन की तरह प्रतिदिन काम करते हैं, परंतु परमेश्वर की निकटता में घुटना में आकर के समय नहीं बिताते हैं। और यही कारण है कि आज कलीसियाओं में समस्या है। हम नीति वचन 6 उसके 9 से 11 पद में आगे पढ़ते हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। दुष्ट जन। जी हाँ, अब हम दुष्ट जन शैतान की संतान का वर्णन सुनेंगे। नीति वचन 6 उसके 12 और 13 पद में लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। क्या आपने किसी मनुष्य में ऐसा देखा है? उसका प्रत्येक काम और प्रत्येक संकेत कुछ प्रकट करता है। उसकी प्रत्येक बात में अनर्थ है। ऐसे कुछ विश्वासी भी पाए जाते हैं। मैं एक सेवक को जानता हूं, मैं कुछ विश्वासियों को भी जानता हूं जो ऐसा व्यवहार करते हैं। उनकी हर एक बात में दो अर्थ होते हैं। कुछ विश्वासी समूह अपनी सभाओं में दो अर्थों के चुटकुले सुनाते हैं। परमेश्वर इसी के विरोध में कहता है और वह इसका विरोध भी करता है। नीति वचन 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती और वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। ध्यान दीजिए, उलट फेर की बातें अर्थात कुटिलता, वह झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। यहाँ एक ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर की संतान कहलाता है, परंतु उसका प्रत्येक काम और बात अनर्थ से पूर्ण है। कहने का मतलब है कि हम करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। हमारे जीवन में अच्छाइयां नहीं है। मेरे मित्र के कार्यालय में एक पुरुष का चित्र है। वह महान प्रचारक तो नहीं, परमेश्वर का एक महान भक्त अवश्य था। मैंने उसके साथ कुछ समय बिताया था। वह मुझे वचनों की शुद्धता का स्मरण करवाता है। मैंने उसके मुंह से कभी दो अर्थ की या अनर्थ की बात नहीं सुनी। उसका जीवन दोपहर के सूर्य के समान शुद्ध था। हमें ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता है। हमें तड़क भड़क वाले युवकों की आवश्यकता नहीं है। वे तो विवाहित होते हुए भी दूसरी लड़कियों पर नजर डालते हैं, लड़कियों पर ललचाते हैं, उनकी पत्नियों को भी उन पर विश्वास नहीं होता है। जी हाँ, हम कहते हैं, ओह उनका व्यक्तित्व कैसा आकर्षक है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि मसीही सेवा में आवश्यकता से अधिक सेवक हैं? परंतु हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पौलुस कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कट्टी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मूर्ख बनाना असंभव है। हमारा परमेश्वर पवित्र जीवन चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह पवित्र है। वह ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य में रुचि रखता है और उसे आशीष देना चाहता है। हमें यह समझना है कि हम एक महापवित्र परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र पवित्रता अभियान में है। वे जीवन की पवित्रता पर ध्यान देते हैं। मैंने एक दिन उससे कहा, मेरे विचार में आप लोगों ने अपनी पवित्रता को खो दिया है, जबकि आप लोगों को हमारे लिए जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं इसका निर्वाह करना है। ओह, आज परमेश्वर के लोगों में पवित्र जीवन पर ध्यान देना कैसा आवश्यक वरन अनिवार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिएं। आज परिवार के टूटने का कारण क्या है? आज हमारे जीवन में अधिक बुराइयां क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं। आज हम सबके लिए एक चुनौती है कि हम अपने परमेश्वर के अनुसार पवित्रता का जीवन जिएं। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लीजिए। पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता है ताकि वह आपको आशीष दे सके। प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू ही है मेरा सृजन, तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र